एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। और आज हम वाकई एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब राजनीतिक दर्शन की दुनिया में हलचल मचा दी थी।
बिल्कुल, जॉन रॉल्स की अ थियोरी ऑफ जस्टिस।
और ये सिर्फ पुरानी या अकादमिक बात नहीं है, आज भी जब हम न्याय, बराबरी, निष्पक्षता की बात करते हैं,
हाँ,
तो इस किताब के आइडियाज बहुत काम के हैं।
सही कहा। ये किताब असल में पूछती है कि एक समाज के तौर पर हम सबके लिए क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, ये कैसे तय करें, खासकर जब हमारे अपने अपने हित हों, अलग अलग सोच हो।
और ये कोशिश करती है कि व्यक्तिगत आज़ादी मतलब मेरी अपनी फ्रीडम और समाज की भलाई, इन दोनों में एक बैलेंस कैसे बने।
और इसने उस सोच को सीधी चुनौती दी जो कहती थी कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए, चाहे कुछ लोग पीछे छूट जाए, जिसे उपयोगितावाद कहते हैं।
हाँ, रॉल्स ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हर एक इंसान मायने रखता है, हर एक की गरिमा।
तो ये जॉन रॉल्स थे कौन? जॉन रॉल्स, जिनका जन्म 1921 में हुआ और 2002 में उनका निधन हुआ, वो 20वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे काफी लंबे समय तक।
जी हाँ। और एक बात जो उनके बारे में कही जाती है वो ये कि दूसरे विश्व युद्ध का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में लड़ाई देखी थी।
अच्छा, तो जाहिर है न्याय और अन्याय के सवालों पर उनकी सोच सिर्फ किताबी नहीं रही होगी, उसमें असल जिंदगी के अनुभव भी खुले मिले होंगे।
बिल्कुल। और उनकी एक खासियत थी कि वो पुराने दार्शनिकों जैसे कांट, लॉक, रूसो, इनको भी बहुत गहराई से जानते थे, और अपने समय के जो नैतिक सिद्धांत थे उनसे भी उनका जुड़ाव था।
मतलब कई विषयों पर उनकी पकड़ थी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स।
हाँ, और इस किताब से पहले भी उनके कुछ लेख जैसे जस्टिस एज फेयरनेस काफी मशहूर हो चुके थे।
बिल्कुल, उनकी एक और कमाल की बात थी, वो पुराने सामाजिक अनुबंध के विचारों को मॉडर्न लॉजिक और इकोनॉमिक्स के साथ मिला देते थे।
बिल्कुल, उनके लेखन में आपको एकदम सख्त लॉजिक भी मिलेगा और साथ ही गहरी मानवीय चिंता भी, ये मिलना मुश्किल होता है।
तो आते हैं इस किताब पर, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका मतलब मुख्य मकसद क्या है?
देखिए, ये किताब मूल रूप से वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर है, मतलब समाज में जो अच्छी चीजें हैं, अधिकार, मौके, पैसा, संपत्ति, इनका बंटवारा कैसे हो। ये किताब इसका एक पूरा एक व्यापक सिद्धांत बनाने की कोशिश है।
एक तरह से ये आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों के लिए एक गाइड की तरह है कि हमें अपने समाज को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
हाँ, कह सकते हैं। इसका दिल एक सवाल है, हम अपने सामाजिक संस्थान मतलब हमारे कानून, सरकार, अर्थव्यवस्था, इनको ऐसा कैसे बनाएं कि वो समाज के हर सदस्य के लिए निष्पक्ष हो।
सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं,
नहीं, सबके लिए। रॉल्स एक ऐसा पब्लिक फिलॉसफी, एक सार्वजनिक दर्शन देना चाहते थे जिस पर एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज खड़ा हो सके। वो पूछ रहे थे एक न्यायपूर्ण समाज की नींव क्या हो।
और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया है ना, वो ओरिजिनल पोजिशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला आइडिया।
हाँ बिल्कुल, ये उनका सबसे प्रसिद्ध विचार प्रयोग है। वो कहते हैं, सोचिए कि हमें एक बिल्कुल नए समाज के नियम बनाने हैं,
ठीक है,
लेकिन एक शर्त है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि उस नए समाज में हमारी अपनी जगह क्या होगी।
मतलब
हमें नहीं पता होगा कि हम अमीर होंगे या गरीब, मर्द होंगे या औरत, किस जाति या धर्म के होंगे, हम कितने पढ़े लिखे होंगे, हमारी सेहत कैसी होगी, हमारी क्या काबिलियत होगी, कुछ नहीं।
अरे, तो हम एक पर्दे के पीछे हैं जहां हमें अपनी पहचान नहीं पता।
हाँ, इसी को वो कहते हैं अज्ञानता का पर्दा या वेल ऑफ इग्नोरेंस। और जिस स्थिति में हम ये नियम बना रहे हैं उसे कहते हैं मूल स्थिति या ओरिजिनल पोजिशन।
ये तो बड़ा मजेदार आइडिया है, इसका फायदा क्या है?
फायदा ये है कि अगर आपको पता ही नहीं कि आप समाज में कहाँ होंगे, तो आप ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जो किसी एक ग्रुप का पक्ष लें।
हाँ, क्योंकि क्या पता आप खुद ही उस ग्रुप में ना हो जिसे नुकसान हो रहा है।
बिल्कुल। तो आप कोशिश करेंगे कि नियम ऐसे हों जो सबके लिए, खासकर जो सबसे कमजोर स्थिति में हो सकते हों, उनके लिए भी ठीक हो। ये निष्पक्षता मतलब इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करने का एक तरीका है।
सही है। तो इस पर्दे के पीछे रॉल्स के हिसाब से लोग किस तरह के नियम या सिद्धांत चुनेंगे?
रॉल्स तर्क देते हैं कि इस स्थिति में तर्कसंगत लोग रैशनल इंडिविजुअल्स न्याय के दो मुख्य सिद्धांत चुनेंगे और इन्हीं दो सिद्धांतों पर ये पूरी किताब आधारित है।
अच्छा, वो दो सिद्धांत कौन से हैं?
पहला सिद्धांत है सम्मान बुनियादी स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज।
ठीक है।
इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को वो सारी बुनियादी आज़ादियाँ मिलनी चाहिए जो दूसरों को भी वैसी ही आज़ादियाँ मिलने के साथ मुमकिन हो।
जैसे?
कौन सी आज़ादियाँ?
जैसे कि बोलने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म मानने या ना मानने की आज़ादी, वोट देने का अधिकार, सभा करने की आज़ादी, मतलब ये जो बेसिक पॉलिटिकल और पर्सनल लिबर्टीज होती हैं।
और रॉल्स कहते हैं कि ये आज़ादियाँ सबसे ज़रूरी हैं।
हाँ, वो बहुत साफ कहते हैं कि इन बुनियादी आज़ादियों का सौदा किसी आर्थिक लाभ या सामाजिक भलाई के लिए नहीं किया जा सकता। ये पहली प्राथमिकता है। जस्टिस कम्स फर्स्ट।
ये बात तो बहुत अहम है, खासकर आज जब कभी कभी ऐसी बातें उठती हैं कि थोड़ी आज़ादी कम कर दो विकास के लिए या सुरक्षा के लिए।
बिल्कुल।
रॉल्स के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। फिर आता है दूसरा सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत, ये थोड़ा मुश्किल है शायद।
हाँ, इसके दो हिस्से हैं और ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जुड़ा है। रॉल्स ये मानते थे कि शायद समाज में पूरी तरह बराबरी ना हो पाए, कुछ ना कुछ असमानता रहेगी।
ठीक है।
लेकिन वो कहते हैं कि ये असमानता तभी जायज है, तभी स्वीकार की जा सकती है जब दो शर्तें पूरी हों।
दो शर्तें, वो क्या है?
पहली शर्त है अवसर की निष्पक्ष समानता, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
अवसर की समानता तो हम सुनते हैं।
हाँ, लेकिन रॉल्स का मतलब सिर्फ कानूनी बराबरी से नहीं है। मतलब सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
तो फिर
उनका मतलब है कि जिन लोगों में बराबर की काबिलियत है और बराबर की मेहनत करने को तैयार हैं, उन्हें आगे बढ़ने का वास्तविक मौका मिलना चाहिए। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, जैसे वो किस परिवार में पैदा हुए, ये उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बननी चाहिए।
अच्छा, मतलब समाज को ये पक्का करना होगा कि गरीब घर का बच्चा भी अगर काबिल है तो उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत मिले ताकि वो मुकाबला कर सके।
बिल्कुल, ये है अवसर की निष्पक्ष समानता। और फिर आती है दूसरी शर्त।
हाँ।
और ये शायद रॉल्स का सबसे क्रांतिकारी और सबसे ज्यादा बहस किया जाने वाला विचार है। इसे कहते हैं अंतर सिद्धांत।
डिफरेंस प्रिंसिपल।
अंतर सिद्धांत ये क्या कहता है?
ये कहता है कि समाज में जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, मतलब अमीरी गरीबी का जो फर्क है, वो केवल और केवल तभी जायज हैं जब वो समाज के सबसे कम लाभान्वित सदस्यों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो।
एक मिनट, मतलब अमीर और अमीर हो सकते हैं लेकिन सिर्फ तब जब उससे सबसे गरीब का भी सबसे ज्यादा भला हो रहा हो।
हाँ, बिल्कुल यही है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है।
हाँ, ये तो काफी रेडिकल है। इसका आधार क्या है?
रॉल्स ऐसा क्यों सोचते हैं?
उनका तर्क ये है कि हमारी जो प्राकृतिक प्रतिभाएं हैं, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई बहुत अच्छा एथलीट है, या हम किस घर में पैदा हुए, ये सब तो किस्मत की बात है।
हमने कमाया तो नहीं ऐसे?
नहीं, ये नैतिक रूप से मनमाना है। इसलिए जिनके पास ये फायदे हैं उनका इन फायदों से होने वाले सारे लाभ पर पूरा नैतिक हक नहीं बनता। समाज एक तरह का मिलजुल कर चलने वाला सिस्टम है, एक सहकारी उद्यम है, कोऑपरेटिव वेंचर। और इसके नियम ऐसे होने चाहिए कि वो सबके लिए निष्पक्ष हों, खासकर उनके लिए जो किस्मत से कमजोर स्थिति में है।
तो इस हिसाब से अगर सरकार अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाती है और उस पैसे से गरीबों के लिए स्कूल या अस्पताल बनाती है,
हाँ,
तो वो सिर्फ दया या चैरिटी नहीं है, वो न्याय का तकाजा है।
रॉल्स के फ्रेमवर्क में देखें तो हाँ, ये व्यवस्था को ज्यादा निष्पक्ष बनाने का एक तरीका है। और वो सिर्फ टैक्स और ट्रांसफर से आगे की बात करते हैं।
अच्छा।
वो एक संपत्ति स्वामी लोकतंत्र, प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं, जहां कोशिश ये हो कि सिर्फ आय का पुनर्वितरण ना हो, बल्कि जो उत्पादन की साधन है, जैसे संपत्ति, पूंजी, इनका स्वामित्व ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में हो,
ताकि लोग सिर्फ सरकार की मदद पर निर्भर ना रहें बल्कि खुद अर्थव्यवस्था में बराबरी के भागीदार बन सकें।
एग्जैक्टली, ताकि एक ज्यादा समतामूलक बुनियाद तैयार हो सके।
एक और बात जो आपने कही थी वो बुनियादी संरचना वाली, रॉल्स इस पर क्यों जोर देते हैं?
हाँ, ये बहुत जरूरी है। रॉल्स कहते हैं कि न्याय का मुख्य विषय समाज की बुनियादी संरचना है, यानी वो मुख्य सामाजिक संस्थान जो हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य तय करते हैं और अवसरों का बंटवारा करते हैं,
जैसे कि हमारा संविधान, हमारी कानूनी व्यवस्था, बाजार के नियम।
हाँ, ये सब, क्योंकि यही संरचना तय करती है कि जन्म से ही लोगों के जीवन की संभावनाएं क्या होंगी। अगर ये बुनियाद ही टेढ़ी है तो फिर आप ऊपर ऊपर कितना भी सुधार कर लें, असली न्याय नहीं आ पाएगा।
मतलब हमें सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार पर नहीं बल्कि सिस्टम के डिजाइन पर ध्यान देना होगा।
बिल्कुल। और रॉल्स ये भी सोचते हैं कि क्या लोग इन नियमों को मानेंगे, क्या एक न्यायपूर्ण समाज टिक पाएगा।
हाँ, ये भी सवाल है।
तो वो नैतिक मनोविज्ञान की भी बात करते हैं कि कैसे लोगों में न्याय की भावना विकसित होती है। वो मानते हैं कि एक सुव्यवस्थित न्यायपूर्ण समाज में लोग स्वाभाविक रूप से उन नियमों का पालन करना सीखेंगे और चाहेंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हो,
क्योंकि इन्हें लगेगा कि ये सिस्टम उनके लिए भी ठीक है।
हाँ, और क्योंकि न्याय के अनुसार जीना अपने आप में एक मानवीय अच्छाई है।
तो अगर हम इस पूरी किताब के मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या बातें निकल कर आती है। मेरे लिए तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है न्याय की प्रधानता।
हाँ।
रॉल्स बार बार कहते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। न्याय सबसे पहले किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद लगे, न्याय से समझौता नहीं हो सकता।
बिल्कुल। और ये हमें याद रखना चाहिए, जैसे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं और लोगों को हटना पड़ता है, सिर्फ पैसा दे देना काफी नहीं, उनके साथ न्याय होना चाहिए।
दूसरी अहम बात है निष्पक्षता, वो अज्ञानता के पर्दे वाला आइडिया।
हाँ, फेयरनेस एज इम्पार्शियलिटी। हमें ऐसे सोचना चाहिए जैसे हमें पता ही ना हो कि हम खुद कहाँ होंगे।
ये हमें हमारी अपनी पक्षपात भरी सोच से बाहर निकालता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें हमें किस्मत से मिली हैं, हमारी प्रतिभा, हमारा परिवार, वो नैतिक रूप से बेमतलब हैं।
और ये रोजमर्रा में भी बहुत काम का है। जब हम भर्ती करते हैं या एडमिशन देते हैं, तो क्या हम सच में निष्पक्ष हैं? ये सवाल ये सिद्धांत उठाता है।
तीसरा, वो अंतर सिद्धांत, ये बहुत पावरफुल है।
हाँ, कि असमानताएं तभी ठीक हैं जब वो सबसे गरीब तबके का भला करें। ये समाज को एक टीम की तरह देखने को कहता है,
जहां सबकी जिम्मेदारी है कि खेल के नियम ऐसे हों कि कोई पीछे ना छूट जाए। ये प्रोग्रेसिव टैक्स या सोशल सेफ्टी नेट्स जैसी चीजों को एक मजबूत नैतिक आधार देता है।
बिल्कुल। ये चैरिटी नहीं, ये न्याय है।
चौथा पॉइंट क्या होगा?
मेरे ख्याल से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। रॉल्स समानता की बात करते हैं, लेकिन वो बुनियादी आज़ादियों को सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ, उनका पहला सिद्धांत यही है, आप आर्थिक फायदे के लिए किसी की बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते।
भारत जैसे देश में जहाँ अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस होती है, ये सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है।
जरूर। और पांचवा,
शायद सार्वजनिक कारण या पब्लिक रीजन का विचार, कि न्याय के सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिन्हें अलग अलग सोच वाले लोग भी तर्क के आधार पर स्वीकार कर सकें।
हाँ, ये लोकतांत्रिक वैधता, लेजिटिमेसी के लिए जरूरी है, खासकर हमारे जैसे विविधता भरे समाज में, जहाँ हमें ऐसे कानूनों और नीतियों की जरूरत है जिन पर व्यापक सहमति बन सके।
इस किताब में कुछ लाइनें तो सचमुच याद रह जाने वाली हैं।
हाँ, जैसे वो पहली ही लाइन, न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है जैसे सत्य विचार प्रणालियों का।
कितनी सीधी और गहरी बात है।
मतलब अगर कोई सिस्टम, कोई संस्था न्यायपूर्ण नहीं है तो वो बेकार है, उसे बदलना ही होगा।
और ये वाली,
प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर आधारित एक अनुल्लंघनीयता होती है जिसे समाज का समग्र कल्याण भी अनदेखा नहीं कर सकता।
ये सीधे सीधे उपयोगितावाद पर छोट है। बहुमत की भलाई के नाम पर भी आप किसी एक व्यक्ति के अधिकारों को कुचल नहीं सकते। व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है।
और ये सोचने वाली बात, कोई भी व्यक्ति अपनी अधिक प्राकृतिक क्षमता का हकदार नहीं है और न ही समाज में अधिक अनुकूल शुरुआती स्थान का गुण रखता है।
ये हमें हमारी अपनी किस्मत पर मिली चीजों पर घमंड करने से रोकता है। ये कहता है कि तुम्हारी प्रतिभा या तुम्हारा अच्छा परिवार तुम्हारी कमाई नहीं बल्कि एक संयोग है।
हाँ, और इसलिए इसका फायदा भी साझा होना चाहिए, खासकर उनके साथ जिन्हें ये संयोग नहीं मिला।
और आखिर में असमानताओं पर वो शर्त, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना है कि वे यथोचित रूप से सबसे कम लाभान्वित लोगों के अधिकतम लाभ के लिए अपेक्षित हों।
हाँ, अंतर सिद्धांत का निचोड़, ये हमेशा हमें याद दिलाता है कि असमानता को जायज ठहराने के लिए एक बहुत ऊंची नैतिक शर्त पूरी करनी होगी।
अच्छा, तो ये सब तो हो गए सिद्धांत, इनका असल जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम कैसे लागू होता देख सकते हैं?
देखिए, संवैधानिक स्तर पर ये बुनियादी अधिकारों की मजबूत गारंटी की बात करता है। बोलने की, धर्म की, राजनीति में भाग लेने की आज़ादी, शायद ये पब्लिक फंडेड इलेक्शन जैसी चीज़ों का भी समर्थन करे ताकि पैसे का जोर कम हो।
और आर्थिक नीतियों में,
वहां ये प्रोग्रेसिव टैक्स यानी अमीरों पर ज्यादा टैक्स, एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट जैसे बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापे की पेंशन, गरीबों के लिए राशन, इन सब का समर्थन करेगा। और ऐसे सरकारी निवेश जो सबसे कमजोर लोगों के लिए मौके बढ़ाएं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में।
शिक्षा नीति में इसका क्या मतलब होगा?
सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि स्कूलों में भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि सरकार शुरू से ही खासकर गरीब बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करे। शायद स्कूल फंडिंग में सुधार हो या कॉलेज तक पहुंच आसान बनाने के कार्यक्रम हो।
और क्रिमिनल जस्टिस मतलब कानून व्यवस्था में?
वहाँ इसका मतलब होगा कि कानून सबके लिए बराबर हो, गरीबों को भी अच्छा वकील मिल सके, बेल के नियम निष्पक्ष हो, सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना न हो बल्कि सुधार भी हो।
हेल्थ केयर में भी इसका असर होगा?
हाँ, ये कहेगा कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच हर नागरिक का अधिकार होनी चाहिए, ये सिर्फ अमीरों का हक नहीं हो सकता।
तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत हमें एक ज्यादा मानवीय और ज्यादा निष्पक्ष समाज बनाने का खाका देते हैं।
बिल्कुल, ये हर पॉलिसी को इस कसौटी पर कसने को कहते हैं कि क्या वो सबके लिए, खासकर सबसे कमजोर के लिए न्यायपूर्ण है।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा? मतलब क्या चीज आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है?
मेरे लिए शायद सबसे प्रभावशाली बात यह है कि रॉल्स ने कितनी बारीकी से व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक समानता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की है। अक्सर लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ हैं।
हाँ, या तो आज़ादी चुन लो या बराबरी।
पर रॉल्स दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। एक न्यायपूर्ण समाज में दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलने चाहिए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम नागरिक के तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो आपसी सम्मान और निष्पक्षता पर आधारित हो।
और मेरे लिए वो अज्ञानता का पर्दा वाला विचार, वो सोचने का एक जबरदस्त टूल है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद कर सकता है जब हमें कोई मुश्किल नैतिक फैसला लेना हो। बस ये सोचें, अगर मुझे नहीं पता कि इस फैसले का मुझ पर क्या असर होगा तो मैं क्या चुनूंगा।
हाँ, ये हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने में मदद करता है। ये सिर्फ एक अकादमिक किताब नहीं है, ये वाकई हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने के बारे में सोचने को उकसाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।